ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। कुंती महारानी की स्तुति, कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो कथा जारी है, तो आज 32वें श्लोक के ऊपर चर्चा होगी। केचित् आहुः अजम् जातम् पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्वाये मलयस्य इव चन्दनम्। केचित् आहुर् अजं जातम्, पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। केचिदाहुरजं जातम्, पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। केचिदाहुरजं जातम्, पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। यस्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति विस्तार के लिए होता है, और कुछ कहते हैं आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप इसके कुल में, आप उसके कुल में उसी प्रकार जन्मे हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति विस्तार के लिए होता है, और कुछ कहते हैं आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार जन्मे हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन। तो इस श्लोक में और इसके बाद आने वाले 3 श्लोकों में श्रीमती कुंती देवी इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाली हैं कि अलग अलग लोगों के मत क्या हैं श्री कृष्ण के इस भौतिक जगत में प्रकट होने के बारे में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव बड़ा विस्मयजनक है और लोगों को भ्रमित करता है, भ्रामक है ये विषय। इसलिए ये स्वाभाविक है कि इस विषय के बारे में लोगों के भिन्न मत होंगे। तो कुंती महारानी अब अन्य लोगों के विचारों को व्यक्त करेंगी। केचित आहु, केचित मतलब कोई, कोई ऐसा कहते, आहु मतलब कहते हैं, तो कोई ऐसा कहते हैं, कोई वैसा कहते हैं, कोई और भी ऐसा कहते हैं। तो ऐसे इन चार श्लोकों में कुंती महारानी अलग 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 कारण बताने वाली हैं श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए, उनके आविर्भाव के लिए। और फिर कहती हैं कि हालांकि आप अजन्मा हैं फिर भी आप जन्म लेते हैं, इसके बारे में कुंती महारानी पहले भी कह चुकी हैं। तो जो अज है, जातम, उसका जन्म होता है, इसके बारे में कई लोगों के अनेक विचार। तो भ्रम का कारण क्या है? श्री कृष्ण के प्राकट्य का भ्रम किस वजह से होता है? क्योंकि हालांकि वो अज हैं फिर भी वो जन्म लेते हैं, ये भ्रम का कारण है। श्री कृष्ण सनातन है, हमेशा वो परम सत्य है, कभी उनका स्थान बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि न केवल श्री कृष्ण अज हैं, लेकिन हम सब भी अज हैं। अज अर्थात जिसका जन्म नहीं होता, क्योंकि हम सब आत्मा हैं और आत्मा का कोई जन्म नहीं है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, लेकिन हमें जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है। जातम, हम जबरदस्ती जातम हैं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम यात्म मायया। गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरी आत्म माया, मेरी अंतरंगा शक्ति से यहाँ संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में यहाँ प्रकट होता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मेरे मूल रूप में मैं प्रकट होता हूँ यहाँ पर। हालांकि मैं अव्यय हूँ, अजह अपि, हालांकि मैं अजन्मा हूँ, हालांकि मैं अव्यय हूँ, फिर भी मैं उसी अव्यय सनातन शरीर में, मैं समय समय पर इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूं। तो अगर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और ऐसे प्रतीत होता है कि वो जन्म ले रहे हैं, बाहर प्रकट हो रहे हैं देवकी माता के गर्भ से, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में हम पढ़ते हैं कि ध्रुव महाराज 6 महीनों तक कड़ी तपस्या करके भगवान के ध्यान में बैठे रहे और अंततः उनको भगवान का, अपने समाधि में भगवान का दर्शन हुआ, अपने अंतःकरण में, अपने दिव्य चक्षु से वो भगवान का दर्शन कर रहे थे। क्योंकि उनकी, उनका जो ध्यान है वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुका था, और जब भगवान उनके हृदय कमल में प्रकट हुए तो उनको बहुत आनंद हुआ और उस ध्यान में वो मग्न हो गए। लेकिन अचानक वो अंतःकरण में जो ध्यान कर रहे थे वो ध्यान भंग हो गया, भगवान ओझल हो गए उनके अंदर से, उनकी आंखें बंद थीं, अंदर की दृष्टि से, अपने दिव्य चक्षु से वो हृदय में स्थित भगवान को देख रहे थे। लेकिन जब अचानक वो ध्यान भंग हो गया, भगवान ओझल हो गए, तो फिर वो विचलित हो गए, विचलित होकर उन्होंने आंखें खोल दी। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रिय वस्तु प्राप्त करने के तुरंत बाद उसको खो देता है तो कैसे विचलित हो जाता है, कैसे कोई भूखा आदमी वो भोजन पाता है, अचानक वो भोजन उसे छीन लिया जाता है, उसकी क्या दशा होती है, उसी प्रकार से ध्रुव महाराज विचलित होकर उन्होंने आंखें खोल दी। और आंखें खोल के क्या देखा कि वही भगवान बिल्कुल वही रूप जो कि वो अपने हृदय में देख रहे थे, वही रूप अब बाहर है उनको। उनको और आश्चर्य हो गया, और थे तो केवल 5 साल के बालक। ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, अंदर से मैं क्या देख रहा हूं, इतना सुंदर रूप है, कौन के भगवान है, कैसे प्रकट हुए, क्या तत्व तो नहीं मालूम था उनको। और फिर डबल विचलित हो गए जब ये दृश्य भंग हो गया, और फिर इसके बाद 3 गुना विचलित हो गए जब वही रूप बाहर से फिर प्रकट हो गया, तो फिर कुछ कह नहीं पाए। वैसे तो उम्र कम होने के नाते वो इस योगी भी नहीं थे कि सुंदर कविताओं की रचना करें, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, जो भगवान ने अपने शंख से ध्रुव महाराज के सर का स्पर्श किया, तो सुंदर कविताओं की रचना वो कर पाए, भगवान की स्तुति कर पाए। तो इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर ध्रुव महाराज के सामने भगवान अंदर से बाहर इस प्रकार से आ पाए, और भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो भले वो देवकी के गर्भ के अंदर से बाहर एक क्षण में क्यों नहीं प्रकट हो सकते हैं? हैं वो अजन्मा, अजम, जातम पे जन्म भी ले सकते हैं। और जब देवकी माता के गर्भ से बाहर आए, वो प्रकट हुए, तो चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए पहले, अपनी माता देवकी को ये आश्वासन देने के लिए कि उनके लिए कोई खतरा नहीं था, उनको ये बताने के लिए कि मैं परम सत्य भगवान ही हूं जो कि तुम्हारा बेटा बनकर आया हूं, इसलिए बिल्कुल डरना नहीं। कंस के डर से अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा क्या होगा, डरना नहीं, मैं भगवान हूं, मैं अपनी रक्षा की बात तो दूर है, तुम्हारी रक्षा भी कर सकता हूं, इसलिए तुम डरना नहीं। तो इस प्रकार से भगवान समय समय पर अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट होते हैं, क्योंकि इस तत्व को लोग समझते नहीं हैं, इसलिए लोग बड़े विचलित होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक कारण बताए ही हैं कि वो क्यों प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम्। वो कहते हैं कि जब धर्म की ग्लानी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो कई कारण तो उन्होंने भगवद गीता में बताए हुए हैं, परंतु कुंती महारानी कह रही हैं कि इनके अलावा और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से भगवान प्रकट होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी कुंती महारानी चर्चा करना चाहती हैं। केचित आहुर अजम जातम, कि ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि और भी कोई कारण हैं आपके प्रकट होने के लिए, तो कौन से कारण है वो? एक एक करके कुंती महारानी अब इन 4 श्लोकों में कहने वाली हैं। अब इन 4 श्लोकों में वो जो कारण बताने वाली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही सारे कारण हैं, इसके अलावा भी और सैकड़ों कारण हो सकते हैं। भगवान जो हैं सैकड़ों कार्यों को, सैकड़ों उद्देश्यों को एक ही कार्य के माध्यम से संपन्न कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़े बहुत उदाहरण श्रीमती कुंती देवी दे रही हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। पुण्य श्लोक का अर्थ यहां पर है वो पुण्यवान धर्मपरायण राजा। ऐसे पुण्यवान धर्मपरायण राजाओं के कीर्ति के विस्तार करने के लिए श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे पुण्यवान राजाओं का गुणगान करना चाहते हैं, यहाँ आकर खुद अपने मुखारविंद से गुणगान करना चाहते हैं, और ऐसे पुण्यवान राजाओं को अद्भुत विशेष शक्ति प्रदान करके उनके कार्यों के माध्यम से उनके कीर्ति का विज्ञापन करवाना चाहते हैं। तो वैसे अगर वैदिक इतिहास देखा जाए तो कई ऐसे पुण्यवान राजा हुए हैं, जैसे महाराज नल, श्रील प्रभुपाद महाराज नल का उदाहरण देते हैं। नल दमयंती का नाम तो आपने सुना है, ऐसे महाराज नल हैं और ऐसे कई राजा हुए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जब कुंती महारानी कहती हैं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, तो वह इन सारे राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रही हैं, वो विशेष करके महाराज युधिष्ठिर की बात कर रही हैं। महाराज नल आदि वो श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, हालांकि पुण्यवान थे, परंतु श्री कृष्ण के साथ उनका जो संबंध नहीं हो था, भक्ति का संबंध, प्रेम का संबंध नहीं था, इसलिए कुंती महारानी को ऐसे राजाओं का नाम लेने से क्या मतलब है, क्योंकि कुंती महारानी तो खुद भक्त हैं। इसलिए वो ऐसे पुण्यवान राजा का नाम लेना चाहती हैं जो अपने ही पुत्र हैं, लेकिन अपना ही पुत्र है, बेटा है, इसलिए नाम नहीं लिया है। पुण्य श्लोकस्य कीर्ति है, तो आप महाराज युधिष्ठिर के गुणगान करने के लिए यहां पर प्रकट हुए हैं। आपके अवतार लेने का कारण क्या है? महाराज युधिष्ठिर का गुणगान करना। अब श्री कृष्ण भी कुंती महारानी के पुत्र तुल्य है, फिर भी कुंती महारानी महाराज युधिष्ठिर का गुणगान कर रही है। उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर भी साक्षात कुंती महारानी के पुत्र ही हैं, फिर भी वो गुणगान कर रही हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कि युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े भक्त हैं और कितने पुण्यवान राजा हैं। कभी कभी पुत्र स्नेह की वजह से, पुत्र के प्रति स्नेह होने की वजह से वो उनको केवल पुत्र मानते हैं, लेकिन जब वो सही ढंग से सोचती हैं तो सोचती हैं, हाँ मेरा पुत्र तो है महाराज युधिष्ठिर, लेकिन कोई साधारण बच्चा नहीं है ये। इसकी वजह से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मेरे गर्भ से ये बच्चा प्रकट हुआ। इसका मतलब है कि कुंती महारानी इस श्लोक से अपने पुत्र युधिष्ठिर महाराज का गुणगान कर रही हैं, कर रही हैं श्री कृष्ण का गुणगान, लेकिन श्री कृष्ण के गुणगान के साथ साथ अपने ही पुत्र महाराज युधिष्ठिर का गुणगान भी हो रहा है। देखिए, प्रहलाद की वजह से केवल भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, तो नरसिंह देव का प्राकट्य ये प्रहलाद महाराज का गुणगान नहीं है तो और क्या है? केवल एक व्यक्ति के लिए भगवान, जो कि इतने सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वो विशेष करके यहां पर आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत विशेष होना चाहिए। उसी प्रकार से यहां पर कुंती महारानी कहती हैं कि आप महाराज युधिष्ठिर के गुणगान करने के लिए, उनके कीर्ति का विस्तार करने के लिए यहां पर आप प्रकट हुए हैं। वैसे इस जगत में, इस भौतिक जगत में, विशेष करके पृथ्वी लोक में ऐसे पुण्यवान राजाओं की बहुत आवश्यकता है। यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा पुण्यवान रहा तो प्रजा भी पुण्यवान रहेगी, अगर राजा पुण्यवान रहा, धर्मपरायण रहा, तो प्रजा खुश होगी। क्योंकि राजा आजकल दुष्ट है तो प्रजा भी दुखी है, प्रजा भी दुष्ट हो जाती है, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं की आवश्यकता है। तो युधिष्ठिर महाराज राज ऋषि थे, राजा भी और ऋषि भी, तो थोड़ा बहुत उनके चरित्र के बारे में सुनना भी आवश्यक है। महाराज युधिष्ठिर इतने धर्मपरायण थे क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे। धर्म की परिपूर्णता होती है कृष्ण भक्ति करना, और उनकी कृष्ण भक्ति की वजह से उनको ये योग्यता प्राप्त हो गई अपने राज्य के कार्य को अच्छी तरह से संभालने के लिए। जो प्रशासन उनका चल रहा था वो इतना परिपूर्ण था, इतना दोष रहित था, दोष मुक्त था, कि ये जो बातें हैं सब जगह फैल गई। उनके राज्य का ऐश्वर्य, उनके निजी, उनके दरबार का ऐश्वर्य, उनकी पत्नी द्रौपदी, उनके भाई पांडव, और उनका जो शक्ति है, उनकी धर्म परायणता है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी भक्ति है, उनकी शक्ति है, ये सब इसका ये यश जो है युधिष्ठिर महाराज का न केवल पृथ्वी के ऊपर परंतु स्वर्ग लोक में भी फैल गया था। और उनका ऐश्वर्य कुबेर और इंद्र से भी अधिक ऐसे प्रतीत हो रहा था। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वर्गलोक के निवासी भी सोचते थे कि काश मेरे पास भी इंद्र, मेरे पास भी युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य इत्यादि होता। तो पृथ्वी लोक में होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज के पास ऐसा ऐश्वर्य था जो कि इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में भी नहीं पाया जा रहा था। इसलिए सारे जो देवता के लोग हैं वो भी प्रार्थना कर रहे थे कि हमें भी यहाँ पर जन्म मिले, हमें भी इस प्रकार का राज्य मिले, हम भी युधिष्ठिर महाराज के संग में रह पाए। तो हालांकि इतना ऐश्वर्य था उनके पास, फिर भी युधिष्ठिर महाराज अपने ऐश्वर्य से, संपत्ति से, समृद्धि से, यश से, प्रजा से बिल्कुल आसक्त नहीं थे। कृष्ण पाद अनुसेवया, क्योंकि कृष्ण भगवान के चरण कमलों में अनुसेवया उनकी इतनी तीव्र सेवा की भावना थी, इसलिए वो इन चीजों से पूरी तरह से विरक्त हो सके। ऐसे ऐश्वर्य राज्य समृद्धि के बीच में बैठे हुए भी वो निरासक्त थे, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से श्री कृष्ण में केंद्रित था। सब कुछ, जो भी कुछ वो कर रहे थे, केवल श्री कृष्ण के लिए ही कर रहे थे। उनके हृदय में कोई काम वासना नहीं थी, कोई राज के भोग की वासना नहीं थी, और इस बात की पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण ने की। युद्ध प्रारंभ होने के पहले जब धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा अपना दूत बनकर कि जाओ और मेरा संदेश पांडवों तक पहुंचाओ, तो संजय आए पांडवों के सामने और फिर वो प्रचार करने लगे युधिष्ठिर महाराज को। संजय भी तो महान भक्त हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु संजय भी श्री कृष्ण के मुख से युधिष्ठिर महाराज का गुणगान सुनना चाहते थे, क्योंकि संजय जानते थे कि हालांकि वो धृतराष्ट्र के सेवक थे, परंतु वो जानते थे कि पांडवों की जीत होने वाली है, पांडव इतने पुण्यवान हैं, उन्हीं की जीत होगी, श्री कृष्ण पांडवों के साथ है। और वो जानते थे कि कई लोग युधिष्ठिर महाराज की निंदा इस कारण से कर सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध में इसलिए जा रहे हैं कि वो राज्य के लोभी हैं। तो इसी कार्य को, इसी बात को वो स्पष्ट इसका खंडन करना चाहते थे, इसलिए वो इस प्रकार से प्रचार करने लगे महाराज युधिष्ठिर को और कहने लगे कि देखो हे राजन, इस दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर है, राज्य, ऐश्वर्य, कुल, ऊंचा जन्म इत्यादि, सौंदर्य, ये सब क्षणिक है, आता है जाता है, तो ये राज भी आएगा जाएगा, तो क्यों इस राज्य की वजह से ये आसक्त होकर आप इतना बड़ा युद्ध करना चाहते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे संजय, ये नहीं सोचना कि मैं इस युद्ध में इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ कि मेरे हृदय में इस राज्य के प्रति वासना है, आसक्ति है, ऐसा नहीं है। और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि श्री कृष्ण से पूछो। और फिर श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं प्रमाण हूँ, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज के हृदय में तनिक भी वासना नहीं है राज भोग के लिए, बल्कि युधिष्ठिर महाराज का हृदय शत प्रतिशत शुद्ध है। इस प्रकार से संजय बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब सारे जगत के लिए, सारे इतिहास के लिए, इतिहास में यह स्पष्ट हो जाएगा कि युधिष्ठिर महाराज ने अगर युद्ध किया तो अपने लिए नहीं किया, उनका हृदय बिल्कुल स्पष्ट था, शुद्ध था, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया, श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार किया। आजकल जो युद्ध होते हैं वो धर्म युद्ध नहीं है, हालांकि धर्म के नाम पर लोग ऐसा करते हैं। तो आजकल जो लोग जो आतंकवादी हैं वो आतताई हैं, ऐसे बम फेंक कर भाग जाते हैं, इधर उधर बम छोड़कर फिर कहीं चले जाते हैं, इतने मासूम लोगों की हत्या होती है। वो सोच रहे हैं कि उनको स्वर्ग गति होगी या भगवान की गति होगी, परंतु उनको तो नरक गति की प्राप्ति होनी है, ये निश्चित है। तो जो युधिष्ठिर महाराज, वो केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे थे, उनको अपने राज्य ऐश्वर्य से बिल्कुल कोई भी आसक्ति नहीं थी। और क्योंकि वो इतने अच्छे भक्त थे, इसलिए वो बुद्धि, वो शक्ति भगवान ने उनको प्रदान कर दी। युधिष्ठिर महाराज केवल एक कर वसूल करने वाले राजा नहीं थे। श्रीमद् भागवत के 11वें-12वें स्कंद में वर्णन है कि आने वाले दिनों में, और इन दिनों में आने वाले मतलब जो उस समय की बात है, 5000 वर्ष पहले जब ये बात कही गई है, तो आने वाले दिनों की बात मतलब आजकल की बात, कि आने वाले दिनों में राजा ऐसे होने वाले हैं जो केवल प्रजा से कर वसूल करेंगे। किस प्रकार से निचोड़ निचोड़ के प्रजा से कर वसूल किया जाए, उनको हैरान किया जाए अपने भोग के लिए, यही उनका विचार होगा। और अंततः प्रजा इतनी हैरान हो जाएगी कि वो सब कुछ, घर बार सब छोड़कर वो जंगल में या पहाड़ों में सब भाग के चले जाएंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं रहेगा। जब रक्षक भक्षक हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श राजा थे, और आदर्श राजा होने के वजह से वो प्रजा का इस प्रकार से देखभाल करते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों का देखभाल करता है। इसलिए सारे जो प्रजा है युधिष्ठिर महाराज के राज में, सब पूरी तरह से संतुष्ट थे। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध में बताया जाता है कि उनके राज में सब कुछ इतना धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चल रहा था कि वर्षा बिल्कुल सही मात्रा में होती थी, सही समय पर होती थी, जितना आवश्यक था उतना होता। पृथ्वी माता प्रचुर मात्रा में जो भी मनुष्य जीवन अब प्राणियों के लिए आवश्यक है वो उत्पन्न करती थी। गाय इतना दूध देती थी कि जब वो चरने गोचर भूमि में जाती थी तो गोचर भूमि जो है वो गायों के दूध से गीला हो जाता था। आजकल गायों से दूध निकालने के लिए अलग अलग लोग फैक्ट्रियों में, कारखानों में, डेयरियों में क्या क्या करते हैं, किसान भी आजकल ऐसे करते हैं। वो केवल बछड़े को दिखाते हैं ताकि गाय दूध देना शुरू करे, और फिर जितना ज़्यादा हो सके दूध निकालते हैं, बछड़े के लिए प्राय कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के समय गाय इतने दूध दिया करती थी कि बछड़े की बात तो दूर है, वो भूमि को भी वो प्रचुर दूध दिया करते थे। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का गुणगान किया है। युधिष्ठिर महाराज को बिल्कुल इस सब चीज़ों से आसक्ति नहीं थी, भक्ति की वजह से। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका लौटने की तैयारी में थे, जब युद्ध समाप्त हो गया था और कुंती महारानी ने भी अपनी प्रार्थनाएं समाप्त कर दी थी इस घटना के बाद, तो युधिष्ठिर महाराज केवल कृष्ण के सामने आए और उनसे कहा कि और थोड़े दिन ठहर जाओ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ये नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनसे दूर चले जाए। श्री कृष्ण जो कि पूर्ण स्वतंत्र हैं, जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, जो हमेशा अपने स्वेच्छानुसार कार्य करते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज के वश में आ गए और युधिष्ठिर महाराज की बात को मानकर उन्होंने अपनी योजना बदल दी। तैयार थे पूरी तरह से, अपना रथ तैयार था, उनका सामान सब कुछ तैयार था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के एक शब्द से उन्होंने अपने सारे प्लान बदल दिए और फिर से रह गए और थोड़े दिन। तो भगवान केवल अपने भक्तों के प्रेम से वो वश में आ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जब युद्ध समाप्त हो गया तो महाराज युधिष्ठिर का हृदय शांत नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि मेरी वजह से, केवल क्योंकि मुझे राजा बनना है इसलिए इतने करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या हो गई, तो मेरे सर के ऊपर ये सारा पाप होगा, तो मैं कितना दुष्ट हूं, कितना नीच हूं, कितना पापी व्यक्ति हूं कि केवल मेरी वजह से ये सब हो गया। सब ने उनको समझाने का प्रयास किया, उनके भाइयों ने, स्वयं श्री कृष्ण ने और जितने भी सारे ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे उन्होंने भी कोशिश किया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के हृदय के अंदर जो पीड़ा थी वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि अंततः ये जो उपदेश है ये भीष्म देव के द्वारा होना चाहिए। वो भी और एक पुण्य श्लोक है, हालांकि राजा की गद्दी पर कभी बैठे नहीं लेकिन एक क्षत्रिय थे, प्रमाणिक क्षत्रिय, तो भीष्म देव के मुखारविंद से श्री कृष्ण उपदेश दिलवाना चाहते थे महाराज युधिष्ठिर को। और फिर भीष्म देव का उपदेश सुनने के बाद थोड़ा कुछ उनका मन जो है शांत हो गया, पूरी तरह से भी नहीं हुआ, और इसलिए वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे ताकि वो अपने पापों से मुक्त हो जाए। और अश्वमेध यज्ञ के लिए काफी धन की आवश्यकता है, तो कहाँ से ये धन प्राप्त किया जाए। अपने भाइयों को उन्होंने अलग अलग दिशाओं में भेजा कि जाके धन एकत्र करो ताकि हम ये अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर सकें। बहुत सालों पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मरुत्त। एक बार ये राजा मरुत्त ने बहुत विशाल यज्ञ संपन्न किया था और उस समय बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया था, बहुत सारा सोना, हीरे, मोती, पन्ने इत्यादि। और ये ब्राह्मण जो थे वो भी आदर्श प्रामाणिक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सोचा कि ये सब धन लेकर हम क्या करेंगे, तो उन्होंने जो उनके लिए आवश्यक था छोटा सा कुछ ले लिया और बाकी ढेर सारा जो उनको धन मिला था, सोना इत्यादि, वो जंगल में जाकर फेंक कर आए। तो ऐसे सैकड़ों ब्राह्मण थे और सैकड़ों ब्राह्मणों के पास ऐसे ढेर सारा सोना था, तो सारे ब्राह्मणों ने वो ढेर सारा सोना जाके जंगल में एक जगह फेंक दिया, तो हम समझ सकते हैं कि प्राय सोने का पहाड़ जैसे हो गया और ये सारा धन वहां पर पड़ा था। कई सालों से, कई पीढ़ियां बीत गई थी। राजा मरुत ने वापस जाकर उस सोने को नहीं लिया, चलो अभी वापस ले लो, उन्होंने फेंक दिया है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो मैंने इनको दान दिया हुआ है, ब्राह्मणों को, अब ब्राह्मण इस सोने का क्या करते हैं वो उनका अधिकार है उसके ऊपर, ये मेरा धन नहीं है, अब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। और राजा के पास इतना धन था कि वहां जाकर और धन लेने की क्या आवश्यकता थी उनके लिए। राजा की बात दूर है, प्रजा में से एक भी व्यक्ति उस धन को लेने के लिए नहीं गया। राजा के पास बहुत धन है हम समझ सकते हैं, राजा नहीं गया, लेकिन प्रजा भी, ऐसा नहीं है कि यह गुप्त बात थी, हर एक व्यक्ति को मालूम था कि वहां ढेर सारा सोना पड़ा है, लेकिन एक भी व्यक्ति प्रजा में से वहां जाकर चुपके से जाकर चोरी करने के लिए नहीं गया। सोचिए आजकल अगर ऐसा होता तो क्या हालत हो जाती थी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक व्यक्ति संतुष्ट था पूरी तरह से, हर एक व्यक्ति के पास जितना उसको चाहिए था उतना धन था, कोई लोभी नहीं था उस समय, जरूरत से ज्यादा कोई भी धन एकत्र करने की इच्छा नहीं रखता था उस समय। तो न केवल ब्राह्मण ऐसे थे लेकिन सारी प्रजा भी ऐसे थी। उन्होंने सोचा कि इतना सारा सोना लेकर हम क्या करेंगे, ये तो बोझ बन जाएगा हमारे ऊपर, अगर लोभ आ जाएगा तो ऐसे लोभ की वजह से हमारी मन की शांति नष्ट हो जाएगी। अति गरीबी से मन की शांति नष्ट होती है और ज्यादा धन होने से भी मन की शांति नष्ट होती है। महाराज मरुत्त ने यज्ञ के समय जितने भी सारे सोने के बर्तन और थाली इत्यादि का प्रयोग किया था उन सब को कचरे के डब्बे में डाल दिया था। तो ब्राह्मण को जो दान दिया वो तो दिया, इसके बाद जो ढेर सारा सोने का जो सोने की जो सामग्री हुआ करती थी, थाली वगैरह, वो सब भी फेंक दिए कचरे के डब्बे में। और ये सारा सोना जो है ये अभी तक उपलब्ध था, वैसे का वैसे था। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जाओ अपने भाइयों से कहो कि वो सारा धन ले आए, ये तो राजा की संपत्ति है, जो किसी का नहीं वो राजा का है। वास्तव में वैदिक संस्कृति के अनुसार सारी संपत्ति राजा की होती है। क्यों क्यों ऐसा बताइए? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और वास्तव में सब कुछ भगवान का है। और क्योंकि राजा नारदेव हैं, नर रूप में देव या भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए ये भगवान की ओर से वो इस संपत्ति के मालिक हैं। और फिर राजा जो है वो दे देते हैं, ठीक है ये इतनी जमीन तुम ले लो, इतना धन तुम ले लो। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो राजा की संपत्ति है, इसलिए आप ये सब ले लो। युधिष्ठिर महाराज को भी कोई इच्छा नहीं थी अपने लिए, परंतु इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए फिर वो सारे उनके भाइयों ने वो सब ले आए। इसलिए अर्जुन का नाम हुआ धनंजय, जिन्होंने धन अर्जन करके लाया महाराज युधिष्ठिर के लिए। राजसूय यज्ञ के समय भी किया उन्होंने। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो यज्ञ किया केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के गुण हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा श्रीमद् भागवत में कि हे ब्राह्मण, प्रहलाद महाराज कितने भाग्यशाली थे कि स्वयं उनके लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, प्रहलाद महाराज तो हैं बड़े भाग्यवान, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं पांडव, उनसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। प्रहलाद महाराज के सामने भगवान केवल एक बार आए, प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का विनाश किया, आशीर्वाद दिया प्रहलाद को, चले गए। लेकिन आपके पूर्वज पांडवों के साथ वही भगवान अपने आदि रूप में आकर उनके सारथी बने, उनके दूत बने, उनके मित्र बने, उनके परिवार के सदस्य बने, उनके साथ में उन्होंने खाया पिया, उठा बैठा, सब कुछ उन्होंने किया साथ में, जैसे कि वो एक साधारण परिवार के सदस्य है। तो देखो तुम्हारे जो परिवार के सदस्य है वो कितने भाग्यशाली हैं, युधिष्ठिर महाराज कितने भाग्यशाली हैं। जब वनवास में थे पांडव तो उस समय कृष्ण भी वहां पर आए उनको देखने के लिए, द्वारका से सत्यभामा देवी को लेकर आए साथ में। मार्कंडेय ऋषि भी वहां पर आए, मार्कंडेय ऋषि को देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए और मार्कंडेय ऋषि से उन्होंने बहुत कुछ पूछताछ किया, क्योंकि वो सालों से, युगों से वो रहे थे वहाँ पर, बल्कि ब्रह्मा जी के पूर्व पहले दिन से वो रहे थे। ब्रह्मा जी की एक सारी रात उन्होंने बिताई उसी शरीर में, और ब्रह्मा जी के इस दिवस में भी कई मन्वंतर बीत गए थे, तो बहुत कुछ जानते थे। और भगवान की कृपा से वो कुछ किसी चीज़ को भूलते नहीं थे, इसलिए जो ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में जो हुआ है और इस कल्प में पिछले मन्वंतरों में जो हुआ है वो सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने बहुत कुछ उनसे पूछा, पुण्यवान राजाओं का इतिहास, भगवान के अलग अलग अवतारों का इतिहास, तो मार्कंडेय ऋषि बता रहे थे। और जब ब्रह्मा जी के दिवस के अंत की के वर्णन की का समय आया तो मार्कंडेय ऋषि ने वर्णन किया उसी घटना को जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी है। और उस समय मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को एक छोटे बालक के रूप में देखा, जो कि एक वटपत्र के ऊपर लेटे हुए थे और अपने पदारविंद को अपने मुखारविंद में डाल रहे थे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य जलेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वही बालम, ये बाल मुकुंद, बाल कृष्ण वटस्य पत्रस्य जलेशयानम, तो ऐसे वटपत्र के ऊपर सोए हुए हैं, और करारबिंद न पदारबिंद, अपने करारबिंद से अपने जो पदारबिंद हैं उनको मुखारबिंद न, अपने मुख में डाला हुआ है, अपने अंगूठी को चूस रहे हैं। तो इस दृश्य को वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि ये मूल रूप है भगवान का। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है प्रलय काल के बाद भी ये एक रूप रह जाते हैं भगवान के, अहम एवा असम एवा अग्रे, जैसे चतुश्लोकी भागवत में भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के समय भी मैं ही हूँ, और सृष्टि के विनाश होने के बाद भी मैं ही रहता हूँ। तो ये बालम मुकुंदम, ये रूप जो है उसको देखकर जब मार्कंडेय ऋषि वर्णन कर रहे थे, तो फिर वो युधिष्ठिर महाराज की ओर देखकर कहने लगे, हे युधिष्ठिर, वही परम सत्य अब ये रहे तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई तुम्हारे मित्र बनकर अब आए हैं, इनको साधारण नहीं समझना, वही है, कितने भाग्यशाली हो आप महाराज युधिष्ठिर, देखो आपके साथ मित्र बनकर परम सत्य भगवान श्री हरि आए हैं। फिर सारे लोग श्री कृष्ण की ओर बड़े स्नेह भरे नेत्रों से देखने लगे। महाराज युधिष्ठिर का हृदय इतना स्वच्छ था कि कोई भी व्यक्ति उनको शत्रु नहीं मानता था, इसलिए उनका नाम है अजात शत्रु। अब ये जातम शब्द यहाँ आता है, मतलब जन्म लिया, अजात मतलब जिसका जन्म नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, ये नहीं जिसके जिसके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ, अजात शत्रु, ये महाराज युधिष्ठिर का नाम है। और उनकी शुद्धता की वजह से युद्ध में भी उनका रथ जो है वो जमीन को छूता नहीं था, जमीन के थोड़ी इंच ऊपर से वो उनका रथ चलता था, चक्का जो है उनके जमीन का चक्र जमीन से स्पर्श नहीं करता था। कब से स्पर्श करने लगा? नरोवा कंजरो कुंजरोवा, उसके बाद जो रथ है जमीन से स्पर्श करने लगा। तो इसके पहले महाराज युधिष्ठिर की शुद्धता ऐसी थी कि रथ ऐसे चला करता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या नहीं किया। राजसूय यज्ञ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली? अतिथियों का सत्कार करना, अतिथियों के चरण धोना, जितने भी अतिथि आते थे उनको उनका स्वागत करते थे, बिठाते थे, चरण धोते थे। तो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज का ये संबंध है। तो अगर पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, अगर कुंती महारानी कह रही हैं कि आप युधिष्ठिर महाराज के लिए उनका गुणगान करने के लिए उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो फिर ये सत्य है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी भगवान कृष्ण के एक नित्य सिद्ध पार्षद हैं, भक्त हैं। कृष्ण लीला में अलग अलग ब्रह्मांडों में वो अलग अलग रूपों में भूमिकाओं में वो शामिल होते हैं कृष्ण लीला में। वैसे हम लोग तो केवल अर्जुन को नित्य सिद्ध मानते हैं, अर्जुन कृष्ण के बहुत करीब है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कौन है? वो भी कितने महान है। तो ये पुण्य श्लोक ये शब्द युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करता है। और फिर आगे चल के कुंती महारानी कहती हैं, यदोह प्रियस्य अन्ववाये, कि महाराज यदु का वर्णन, और एक पुण्य श्लोक, और एक महान राजा राज ऋषि, प्रियस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, अन्ववाये आप उनके परिवार में प्रकट हुए, यदु महाराज के वंशज आप बने। वैसे कोई व्यक्ति अगर किसी बड़ी परिवार बड़े परिवार में जन्म लेता है तो उसका यश बढ़ता है, क्योंकि वो ऐसे बड़े परिवार में जन्म लिया है। ये अच्छा, ये बिरला का पोता है, अच्छा बिरला का पोता है, ओ भले उस व्यक्ति में कोई योग्यता हो या न हो, लेकिन बिरला के कुटुंब में जन्म लिया, अच्छा अच्छा बिरला का पोता है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण किसी जिस कुल में प्रकट होते हैं तो उस कुल का यश बढ़ जाता है, उस वो कुल प्रसिद्ध हो जाता है। देखिए महाराज यदु तो वैसे भी प्रसिद्ध है, लेकिन अब और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं, क्योंकि उनके उनके वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये है महाराज यदु, जिनके वंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन कभी कभी कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि वो ऐसे अभी लोग बोलते हैं कि देखो ये है श्री कृष्ण जो कि महाराज यदु के वंश में प्रकट हुए। क्योंकि यदु महाराज इतने बड़े भक्त थे, इतने प्रिय थे, यदोह प्रियस्य, क्योंकि वो इतने प्रिय थे श्री कृष्ण के लिए कि कृष्ण उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वो उनके कुल में प्रकट हुए। महाराज यदु, इनका वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी आता है। महान राजा थे और जब घूम रहे थे, एक बार भ्रमण कर रहे थे, तो एक अवधूत ब्राह्मण से मिले और वो पहचान ली कि ये अवधूत ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है, ये तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है। तो तुरंत जाकर उनसे कई प्रश्न उन्होंने किए कि आप तो इस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं मानो कि आप अज्ञानी हैं, लेकिन मैं तो पहचान सकता हूँ आपको, आप तो बहुत पहुँचे हुए आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, इसलिए कृपा करके मुझे सदुपदेश दीजिए। फिर इस अवधूत ब्राह्मण ने उनको उपदेश दिया और कहा कि मेरे 24 गुरु हैं, जैसे पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये कबूतर है, इत्यादि इत्यादि, और इन सब से मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। और क्या सीखा उन्होंने, तो अवधूत ब्राह्मण ने उनको उपदेश दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद। और श्री श्रीधर स्वामी और साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस वो कहते हैं कि ये अवधूत ब्राह्मण कौन थे, कोई जानता है कौन थे ये अवधूत ब्राह्मण? नारद जी नहीं, और एक गेस, भगवान दत्तात्रेय, सही, भगवान के अवतार दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय भगवान स्वयं इस अवधूत के वेश में थे और उन्होंने महाराज यदु को ये विशेष उपदेश दिया। वास्तव में यदु महाराज के बारे में 9वें स्कंद में भी आती है और वो ययाति महाराज से संबंधित है। महाराज ययाति वास्तव में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से उन्होंने विवाह कर लिया। ये कहानी बहुत बड़ी है, आपको नहीं सुनाएंगे, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में आता है। विवाह तो हो गया, लेकिन देवयानी की एक सहेली थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी पुत्री देवयानी है, आपने विवाह देवयानी से किया है, तो केवल देवयानी के साथ में रहना, शर्मिष्ठा के साथ नहीं। परंतु महाराज ययाति ने इस बात को सुना नहीं और दोनों देवयानी और शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न हुए। कुल मिलाकर दोनों पत्नियों से 5 पुत्र हुए। तो शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया, उन्होंने महाराज ययाति को शाप दिया कि तुम एक बूढ़े व्यक्ति बन जाओ। तो महाराज ययाति ने जब कृपा याचना की तो फिर शुक्राचार्य को कृपा हुई, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो पूरी तरह से ये शाप बदल नहीं सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बदल सकता हूँ कि अगर तुम्हारा बुढ़ापा कोई स्वीकार करके उसका यौवन तुमको दे दे तो फिर तुम युवक फिर से हो सकते हो। तो फिर महाराज ययाति जो है अपने सबसे बड़े पुत्र यदु, जिनका नाम यहाँ है यदु प्रियस्य, यदु के पास गए कि ये मेरे प्रिय पुत्र, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और लेकिन मुझे बहुत इंद्र तृप्ति करना है और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए थोड़े सालों के लिए तुम्हारा यौवन मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो, और जब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा तो ये यौवन तुमको वापस लौटाऊँगा और फिर से मेरा बुढ़ापा वापस ले लूँगा। तो यदु ने कहा कि नहीं, युव अवस्था में इंद्र तृप्ति की भावना ज़्यादा होती है, वासनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनको योग अवस्था में तृप्त करना ही ठीक है, नहीं तो वैराग्य की भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है आगे चल के, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके बाद जो तीन पुत्र थे उन्होंने भी इनकार किया, और जो सबसे छोटा पुत्र था पूरो उसने स्वीकार कर लिया। तो महाराज ययाति जो है बड़े प्रसन्न हुए उससे, और अंत में बहुत बहुत भोग करने के बाद कई सालों से फिर महाराज ययाति के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। इतना भोग करने के बाद भी जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने सोचा कि मुझे सब कुछ त्यागना चाहिए, और त्यागते समय उन्होंने सबसे छोटे पुत्र पूरु को विश्व सम्राट बनाया, और उनके अन्य पुत्र थे उनको पूरु के नीचे तो छोटे छोटे राज्य दिए, सम्राट पूरु और अन्य केवल राजा। तो खैर इस प्रकार से पूरु का वंश आगे चलता गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद वैष्णव आचार्यों की टीकाओं से समझाते हैं कि महाराज यदु का इनकार करना और उनके अन्य तीन भाइयों को इनकार करने में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि जो बीच वाले तीन भाई थे उन्होंने महाराज यदु के अनुरोध को इंद्र तृप्ति की वजह से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको भी इंद्र तृप्ति करना था, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम हमारी युवा अवस्था आपको नहीं दे सकते। लेकिन महाराज यदु की बात ऐसी नहीं थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज यदु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और उनके मन में ये इच्छा स्पष्ट थी कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है श्री कृष्ण का, मुझे इस भौतिक जगत से पूरी तरह से विरक्त होना है। लेकिन ये तब हो पाएगा जबकि युव अवस्था में मैं सारे भोग को जल्दी जल्दी समाप्त कर लूं, ताकि जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता जाएगा ये सब अनुभव की वजह से मैं तंग आ जाऊंगा, विरक्त हो जाऊंगा और पूरी तरह से भक्ति में लग जाऊंगा। अगर बुढ़ापा अभी आ गया तो ये मेरी भक्ति को विचलित करेगा, एक डिस्टर्बेंस मेरे भक्ति में आ जाएगा, उत्पात आ जाएगा मेरे भक्ति में, इसलिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं अब दे दूंगा मेरी युवा अवस्था और सीधे समय के पहले मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जबकि मेरा मन अभी तक वश में नहीं है, जब इंद्र तृप्ति की वासनाएं कामनाएं जो हैं अभी तक प्रबल हैं, तो फिर मेरी भक्ति में ये एक बाधक वस्तु हो जाएगा। तो ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि महाराज यदु अच्छी तरह से जानते थे कि स्वयं श्री कृष्ण उनके वंश में आगे आने वाले हैं, और वो चाहते थे कि श्री कृष्ण का आगमन, श्री कृष्ण का प्राकट्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाए। इसलिए वो सोच रहे थे अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर से आगे न जाने कब मुझे युवावस्था मिलेगी, मिलेगी तो सही लेकिन कब मिलेगी, और उस उतना समय श्री कृष्ण को प्रकट होने के लिए और देर हो जाएगा। जब सुखदेव गोस्वामी बीच वाले तीन भाइयों का वर्णन करते हैं तो उनको वो अधर्मज्ञ कह के संबोधित करते हैं कि वो अधर्म का पालन कर रहे थे और इसलिए उन्होंने इनकार किया। वैसे पिता के आदेश का पालन करना ये पुत्र के लिए धर्म है। जब बीच वाले तीन पुत्रों ने इनकार किया पिता का आदेश तो वो अधर्म था, परंतु प्रभुपाद समझाते हैं कि महाराज यदु का इनकार करना वो अधर्म नहीं है, क्योंकि वो एक ऊंचे सिद्धांत के पालन के लिए है। जिस प्रकार से जब चतुष्कुमारों ने ब्रह्मा जी का आदेश का पालन नहीं किया तो उसमें कोई दोष नहीं था, ब्रह्मा जी का आदेश था उनके चार पुत्रों के प्रति कि तुम विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो, संतान की उत्पत्ति करो। तो चार चतुष्कुमारों ने कहा नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं और हम परम सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए एक बाधक चीज़ हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, ज़्यादा प्रकट नहीं किया लेकिन फिर भी गुस्सा अपने भ्रुकुटियों के बीच में आ गया, और फिर किस रूप में बाहर प्रकट हुआ, शिवजी रुद्र के रूप में ये प्रकट हुआ। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जिस तरह से चतुष कुमारों का ये अपने पिता का आदेश इनकार करना एक ऊंचे सिद्धांत के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए ये गलत नहीं था, उसी प्रकार से महाराज यदु को भी अपने पिता का आदेश का पालन नहीं करना ये गलत नहीं था। वैसे शास्त्र में कहा जाता है, प्रभुपाद एक जगह भागवत में लिखते हैं कि गुरु का आदेश तो पालन करना चाहिए, लेकिन एक आदेश है गुरु का जो नहीं पालन करने से चलता है। कौन सा है वो? विवाह का आदेश। अगर गुरु कहेंगे विवाह करो तो उस समय कोई बोले गुरु महाराज हमको विवाह नहीं करना है तो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं जगह तात्पर्य में। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि गुरु हमको जानते हैं अच्छी तरह से और हमारे भलाई के लिए जो है वो हमको बताते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर गुरु हम किसी को बोले कि विवाह करो, नहीं नहीं शास्त्रों में बताया है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुरु हमको अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी भक्ति के लिए अनुकूल क्या होगा, उस दृष्टि से स्वीकार करना उचित होगा। तो खैर महाराज यदु, उस महाराज यदु ने जिन्होंने कि अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया था, वही महाराज यदु के वंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदु महाराज के वंश में और कई महान राजा हुए, राज ऋषि। बाद में एक राजा आए कई पीढ़ियों बाद जिनका नाम था मधु, और मधु के बहुत ही विशेष पुत्र हुए जिनका नाम था वृष्णि। तो फिर भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदु, मधु और वृष्णि ये तीन पूर्वज थे कृष्ण के, इसलिए इस वंश का नाम हुआ है यादव वंश या माधव वंश या वृष्णि वंश। तो कभी कभी कृष्ण को हे यादव भी कहते हैं कि यदु वंश में आने वाले, कभी माधव भी कहते हैं। माधव शब्द के अर्थ कई होते हैं। माधव शब्द का अर्थ है जो कि लक्ष्मी देवी के पति, और माधव शब्द का ये भी एक अर्थ है जो माधव ऋतु में, जो माधव महीना होता है वसंत ऋतु में, जो रमण करते हैं, जो लीला करते हैं, उनको भी माधव कहते हैं। और माधव शब्द का और एक अर्थ ये भी है कि जो मधु राजा के वंश में आते हैं। तो इस प्रकार से यादव, माधव और वृष्णि, वृष्णि वंश, तो ये तीनों वंश एक ही लाइन में आते हैं, इनमें कृष्ण भगवान प्रकट हुए। वैसे महाराज यदु और महाराज मधु के बीच में एक कहीं जगह पीढ़ी में महाराज कृतवीर आए। कृतवीर महाराज के पुत्र थे अर्जुन, इसलिए उनका नाम हुआ कार्तिकवीर अर्जुन। और यही कार्तिकवीर अर्जुन हैं जिनके साथ परशुराम ने युद्ध किया था, और परशुराम ने कार्तिकवीर अर्जुन की हत्या कर दी, साथ साथ उनके सारे पुत्रों की हत्या कर दी। केवल पांच पुत्र रह गए और उन पांच पुत्रों ने फिर वो वंश चलाया, और उनके वंश में आगे चल के मधु आए, फिर वृष्णि और कृष्ण। तो इस प्रकार से ये कृष्ण का वंश है। कृष्ण भी इस भौतिक जगत के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, वो भी किसी एक वंश में जन्म लेते हैं। ज़्यादातर क्षत्रिय बन के आते हैं श्री कृष्ण, कभी कभी ब्राह्मण बन के आते हैं। तो क्षत्रिय वंश में आते हैं तो भगवान या तो सूर्यवंश में या चंद्रवंश में, तो ये चंद्रवंश का एक भाग है। तो कृष्ण भगवान इस वंश में प्रकट हुए, इसलिए जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप है, वृष्णि वंश के प्रदीप हैं वो। वृष्णि वंश के कीर्ति का विस्तार करने का कारण है श्री कृष्ण। तो मधु और वृष्णि और यदु ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से प्रसिद्ध हो गए हैं। तो ऐसे महाराज यदु को प्रसन्न करने के लिए उनके परिवार में वो प्रकट हुए। कैसे उनके वंश में आए वो? मलयस्य इव चंदनम, जैसे मलय पर्वत का चंदन है उस प्रकार से। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, चंदन तो चंदन है, चाहे वो मलय पर्वत में पाया जाए या किसी दूसरे पर्वत में पाया जाए, लेकिन क्योंकि उस पर्वत में विशेष करके वहाँ पाया जाता है तो वो चंदन को मलय चंदन कहते हैं। मलय पर्वत वाला चंदन तो मलय चंदन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक परफ्यूम है जिसका नाम है यूडी कोलोन। लोग अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए ये परफ्यूम लगाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यूडी कोलोन ये परफ्यूम पहले बना कोलोन नाम के शहर में यूरोप में। ये यूडी कोलोन तो कहीं भी बन सकता है, क्योंकि वो प्रसिद्ध हुआ उस शहर में तो उस परफ्यूम का नाम कोलोन के बाद हो गया, तो यूडी कोलोन। तो ठीक उसी प्रकार से ये चंदन तो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, परंतु मलय पर्वत में विशेष करके पाया जाता है, इसीलिए इसको मलय चंदन कहते हैं। सबसे अच्छे क्वालिटी का चंदन मलय चंदन। जैसे आम, सबसे अच्छा आम कहाँ मिलता है? रत्नागिरी। तो यहाँ का आम जो बड़ा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से सबसे श्रेष्ठ चंदन मलय चंदन। प्रभुपाद कहते हैं दो जगह हैं मलय नाम के, एक तो मलय पर्वत जो यहाँ है, और दूसरा है जो आज मलेशिया नाम से जाना जाता है, जो देश है मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, ये सारे देशों में वैदिक संस्कृति पहले थी। कहीं पहले हम इंडोनेशिया के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, माधव सब जाके आए वहाँ, वो बता रहे थे वहाँ की, वहाँ लोगों के नाम कैसे हैं, सुकर्णो पुत्री, ये पुत्री, वो पुत्र, सबके नाम पुत्र हैं या पुत्री हैं? जो पुरुष होते हैं उनका नाम पुत्र है ना कोई पुत्र, भीम पुत्र है, और उनके नाम है पुत्री, सुकर्णो पुत्री। तो इस प्रकार से ये संस्कृति वहाँ भी थी उस समय। तो मलेशिया, वहाँ भी ये मलय शब्द मलेशिया को भी संबोधित करता है। प्रभुपाद कहते हैं आजकल वहाँ केवल वहाँ रबर बनाते हैं, चंदन वगैरह नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि चंदन किसी एक पर्वत में हो तो उस पर्वत से उसका नाम जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जिस कुल में प्रकट होते हैं उस कुल का नाम उनको लग जाता है कि ये यादव है, इनका नाम है यादव, क्यों? यदु कुल के वंश में प्रकट हुए। वैसे श्री कृष्ण किसी वंश के नहीं है, श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं इस भौतिक जगत से किसी वंश से, चाहे वो चंद्रवंश हो, सूर्यवंश हो, भगवान श्री कृष्ण को इस भौतिक दुनिया के किसी भी पीढ़ी से, वंश से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन जैसे चंदन मलय चंदन जाना जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण को यादव कहते हैं, उसी रूप से वो वहाँ पर प्रकट हुए। प्रभुपाद चंदन के बारे में थोड़ा कुछ कहते हैं इसी तात्पर्य में कि भारत में विशेष करके गर्मी के समय में अगर ठंडक चाहिए होता है तो चंदन लगाते हैं। पहले ये एक तरह का आभूषण भी हुआ करता था, लोग स्नान करके फिर अपने आप को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे, आभूषण पहनते थे, तिलक वगैरह धारण करते थे और फिर चंदन वगैरह भी लगाते थे, चंदन प्रसाद वो लगाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कलयुग में क्या होगा, स्नानम एव प्रसाधनम। प्रसाधनम मतलब जो आभूषण वगैरह पहनते हैं, अच्छी तरह से तैयार होते हैं, उसको प्रसाधनम कहते हैं। तो चंदन तिलक इत्यादि करने के बाद ही ये प्रसाधनम कहा जाता है। लेकिन आजकल कलयुग में क्या है, एक आदमी ने स्नान भी कर लिया तो बहुत है, तिलक की बात दूर है, चंदन की बात दूर है, शुद्धिकरण ये केवल स्नान, अगर कोई स्नान करा रही है ये तो बहुत शुद्ध है। आजकल कितने लोग स्नान नहीं करते हैं। वृंदावन में एक व्यक्ति आया उड़ीसा से, वो वकील था, नौजवान था, लेकिन अच्छा वकील था, उसका अच्छा प्रैक्टिस था वहाँ। तो कहा मुझे ब्रह्मचारी बनना है, उससे बात किया, सोचा ठीक है अच्छी बात है। तो फिर 10 दिन के बाद वो हमसे मिलने आया कि हमको नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्या बात है, कोई तकलीफ़ है, किसी ने कुछ कहा तुमसे, कुछ क्या क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है? तो कहा कि हमको स्नान करने की आदत है। कहा कि क्या मतलब? बोला कि स्नान नहीं करते थे तुम पहले? हाँ करता था, लेकिन क्या है, केवल गर्मी में करता था, वो भी 3 दिन में एक बार। कहा पुरी में? जगन्नाथपुरी में 3 दिन में एक बार स्नान करते थे। हमने कहा ये देखो क्या परिस्थिति है। बोले यहाँ हमको दिन में 3 बार करना पड़ता है, वहाँ 3 दिन में एक बार करते थे, ये हमको नहीं हो रहा है। बोला सच्ची ये कारण है कि कोई दूसरा कारण है, हमको बताना नहीं चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, हमको यही है, हम थोड़ी देर बाहर रह के आएंगे, सेवा करेंगे। मैंने कहा बाहर भी रहोगे स्नान तो करना पड़ेगा, उसके बिना यहाँ हम नहीं छोड़ेंगे अंदर। तो देखो भारत में भी रहने वाले लोग, ऐसे पुण्यवान जगह में रहने वाले जैसे जगन्नाथपुरी में रहते हैं, अच्छे परिवार से लिखा पढ़ा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वकील है, गर्मी में भी 3 दिन में एक बार स्नान करता है, तो फिर ठंडी में क्या होगा सोचिए। और विदेशों में तो बात ही दूर है। जर्मनी से एक भक्त आए थे कई साल पहले, वो बता रहे थे उनके कंपनी ने उनको भेजा था, तो एक साल वो कंपनी के उस शाखा में वो काम करते थे। तो कहते थे अगर 9 बजे का समय है ऑफिस में तो सभी लोग घर अपने अपने घर में 8:30 बजे 8:15 बजे उठते हैं, और उठ के दांत भी साफ नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऑफिस में जब हम जाते हैं तो ऑफिस के जो शौचालय में सभी लोग वहाँ दांत ब्रश कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर, ऑफिस में के शौचालय में सब स्नान कर रहे हैं, स्नान तो नहीं करेंगे, और वहीं शौच करना, वहीं अपना दांत वगैरह सब साफ करना, और फिर 10-15 मिनट थोड़ा बहुत मुंह धो लिया, और घर से निकलने के पहले बहुत सारा यूडी कोलोन लगा के आते थे, परफ्यूम वगैरह लगा के आते, ताकि शरीर में कोई गंध ना आए, इतने दिन स्नान नहीं किया। तो स्नान कब करेंगे? रविवार को। रविवार के एक दिन वो अच्छी तरह से उनके बाथटब में बैठकर स्नान करेंगे। वो बोलते थे मैं पहली बार ऐसे कुछ देखा, मैंने कभी हैरान हो गया, बोले आज तक मैंने ऐसे कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और ऐसे लोगों के बीच में मैं काम कर रहा था वहाँ पर। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत में जो कहा है स्नानम एव प्रसादनम, स्नान भी नहीं हो रहा है तो तिलक चंदन इनकी बात तो दूर है। तो पहले सभी लोग स्नान भी करते थे समय समय पर, दिन में 2-3 बार कम से कम तिलक वगैरह धारण करके, फिर चंदन भी, चंदन प्रसाद लगाते थे, इससे कि शरीर में मन को भी ठंडक पहुंचती थी। भगवान को भी चंदन ऐसे लेप लगाया जाता है, साक्षी गोपाल की कथा आप जानते हैं, साक्षी गोपाल नहीं, खीर कुचोरा गोपीनाथ, कि कैसे माधवेंद्र पुरी को आदेश मिला कि हे माधवेंद्र मेरा शरीर बहुत गर्म है, मलय पर्वत का चंदन मुझे चाहिए, लेकर आओ। तो माधवेंद्र पुरी नीलाचल गए, और वहाँ से चंदन जब लेकर आ रहे थे तो स्वप्न में गोपाल आए, कोई बात नहीं गोपीनाथ को ही लेप लगाना, गोपीनाथ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, गोपीनाथ के तक ठंडक पहुँच जाएगी इसका मतलब मैं भी ठंडा हो जाऊँगा। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया को होता है, ये दिवस जो है साल में सबसे गर्म माना जाता है, भौगोलिक दृष्टि से जो पृथ्वी और सूरज वगैरह की जो स्थितियों को देख कर ये माना जाता है कि अक्षय तृतीया जिस दिन पर सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, वो दिवस सबसे साल में गर्म माना जाता है। तो उस दिन पर विशेष करके वृंदावन में जो बड़ी मूर्तियां होती हैं उनके ऊपर भी चंदन का लेप लगाया जाता है। चंदन यात्रा तो 21 दिन की होती है, उस समय छोटी मूर्तियों पर 21 दिन में चंदन लगाया जाता है, लेकिन इस एक दिवस पर अक्षय तृतीया के दिवस पर बड़े मूर्तियों के ऊपर भी चंदन का लेप लगाया जाता है। और वृंदावन के अलग 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 मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो तरह तरह से सुंदर सुंदर चंदन का श्रृंगार करते हैं, अलग अलग रंगों में, अलग अलग तरह से, बहुत सुंदर है ये दृश्य अक्षय तृतीया के दिन। तो खैर ये है मलय चंदन की बात। तो भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार से प्रकट होते हैं यदु महाराज के वंश में, जैसे कि मलय पर्वत में चंदन होता है। चंदन के गुण अलग हैं, मलय पर्वत के गुण अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों का संबंध है। उसी प्रकार के श्री कृष्ण कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी महाराज यदु उनके बहुत प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनके वंश में प्रकट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। कोई टीका, टिप्पणी, प्रश्न? नहीं, ये युद्ध की बात बाद की बात है। ये जो धन वगैरह की बात है वो युद्ध के पहले राजसु यज्ञ वगैरह सब उन्होंने किया था, उस समय की बात है। फिर जब उनको वनवास में जाना पड़ा, उनका सब कुछ छीन लिया कौरवों ने, सीधे वन जंगल में आ गए, रास्ते पर आ गए वो सब। फिर से जब आए तो और भी उनको कुछ चाहिए था। धन में तो, युद्ध में तो सब कुछ नष्ट हो गया, इसलिए फिर उनको धन की आवश्यकता पड़ी उस समय।
हरे कृष्ण, देवकी माता को डर क्यों लगा? भगवान प्रकट हो रहे थे तो वो तो शुद्ध भक्ति, वो अभय रहने थे, तो डर क्यों लगा था उनको?
यशोदा माता और नंद महाराज भी क्यों घबरा गए, क्यों डरते थे वो कि अरे असुर आएगा? क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम इतना तीव्र था कि वो भगवत तत्व ज्ञान को उस स्नेह ने ढक लिया। इसलिए माता देवकी को लगा कि अरे क्या होगा, क्या होगा मेरे पुत्र का। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चा विष्णु है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उनको सांत्वना थोड़ी बहुत मिल गई। लेकिन यशोदा माता के मन में बिल्कुल भगवत तत्व ज्ञान नहीं था। देवकी माता के मन में थोड़ा कुछ था, लेकिन यशोदा माता के मन में बिल्कुल नहीं। युधिष्ठिर महाराज को मालूम था युद्ध कृष्ण की इच्छा से हुआ है, तो युधिष्ठिर महाराज दुखी क्यों हुए? क्योंकि उनका मन, वो भक्त थे, भक्त का हृदय बड़ा कोमल होता है। वो ऐसे हिंसा, क्रूरता और दुख, ऐसे कष्ट नहीं देखना चाहते। उन्होंने सोचा कि ठीक है, कृष्ण की इच्छा के अनुसार भी हुआ, लेकिन फिर भी इतने लोग मारे गए, और केवल इसीलिए कि मुझे कृष्ण गद्दी पर बिठाना चाहते थे, केवल मेरी वजह से। कृष्ण को दोष नहीं दे रहे थे, दोष अपने आप को दे रहे थे कि मुझे गद्दी पर बैठना था, इसलिए मेरी वजह से ये सब हुआ। इसलिए अर्जुन भी भक्त हैं, उनका भी हृदय कोमल था। युद्ध के पहले वो भी नहीं करना चाहते थे, मैं कैसे मार सकता हूँ मेरे रिश्तेदारों को, केवल मुझे राज भोग की करना है, इसलिए इनकी हत्या मुझे करना है? नहीं नहीं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि भगवान के भक्त थे, इसलिए उनका हृदय बड़ा कोमल था, इसलिए उनको दुख हुआ। हरे कृष्णा।
गुरु जी, आपने कहा कि सिंहदेव भगवान हालांकि प्रहलाद महाराज के लिए अवतीर्ण हुए थे, तो ये प्रहलाद महाराज का ग्लोरी है, तो लेकिन जब महाजनन की बात आती है तो उसमें युधिष्ठिर महाराज या पांडवों को मिलाया नहीं जाता, क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे पांडवों के लिए भगवान ने इतना नज़दीक संबंध रखे थे, उनके साथ व्यवहार किए थे, तो इसके लिए कुछ कारण है।
वैसे महाजन कितने सारे हैं? बहुत सारे, 12 हैं मुख्य महाजन जिनका वर्णन यमराज ने किया। लेकिन इतिहास में देखा जाए, एक भौतिक दृष्टि से, साधारण दृष्टि से, ये घटना तो महाराज युधिष्ठिर के बहुत पहले हुआ। सुखदेव गोस्वामी की बात, नाम भी वहां पर है, भीष्मदेव का नाम भी है, परंतु और कितने महाजन हैं? महाजन यमराज ने कहे 12 महाजन हैं। महाजन कौन होता है? जो महान जन, महान कौन होता है? जिसको महान ये के शरण में जाए वो महान है वास्तव में। तो जो मनुष्य भौतिक जगत के इतिहास में ऐसे शुद्ध भक्तों की संख्या कितनी बड़ी है, ब्रजवासियों का भी नाम भी नहीं है उसमें, 12 नंबर उस लिस्ट में है ना, तो ऐसे कई है। और ये 12 महाजनों का नाम लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ही ये 12 हैं और नहीं है, ऐसा नहीं। माधव प्रभु को टीका करेंगे, टिप्पणी कुछ जो हमने कोई जो नहीं कहा उसको ऐड करेंगे।
अर्जुन इज आल्सो नोन एज कीर्ति एंड
कीर्ति,
या वन ऑफ हिज नेम्स इज कीर्ति। व्हाई इज इट दैट इन दिस वर्स इट्स नॉट इंडिकेटिंग अर्जुन, इट इज पूर्ण श्लोक इज कीर्ति
Why? What is?
Why he is not glorified by Krishna's birth? He, why is it only indicating Yudhishthira?
प्रश्न ये है कि ये पुण्य श्लोक से कीर्तये ये केवल युधिष्ठिर महाराज के लिए क्यों है, अर्जुन के लिए क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि अर्जुन का नाम भी कीर्ति है, परंतु यहाँ पे युधिष्ठिर का नाम पुण्य श्लोक है, पुण्य श्लोक की कीर्ति। तो नाम जो है वो युधिष्ठिर महाराज का पुण्य श्लोक, उसके ऊपर है वो टीका, कीर्ति शब्द के ऊपर नहीं है जोर, जोर है पुण्य श्लोक के ऊपर। तो पुण्य श्लोक मतलब वो राजा जो बहुत पुण्यवान है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज का नाम लिखा है इसमें। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, धर्मपरायण थे, इसलिए ये विशेष करके अर्जुन को नहीं बल्कि महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करता है। और युधिष्ठिर महाराज भी अन्य जगह तीन ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त हैं भगवान के, जिनको हरिदास कह के संबोधित किया गया है श्रीमद् भागवत में। कौन है ये तीन भक्त? एक तो है गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन महाराज की है, और दूसरे उद्धव, बहुत अच्छा, और तीसरे युधिष्ठिर महाराज। अर्जुन नहीं, युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज भी बहुत विशेष भक्त हैं भगवान के। ठीक है, बहुत देर हो गई, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि
यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gopula Nanda Radha Gopula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.